ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली सरकार से आयुष्मान भारत और आयुष्मान व्यय वंदना योजना लागू करने का फिर आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र को लेकर जनता से सुझाव मांगेगी। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार पांचवें दिन कोई चर्चा नहीं हुई। निर्वाचन आयोग का वार्षिक खेल सप्ताह आज से राजधानी के सीरी फोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू और राजधानी के कनॉट प्लेस में सरस फूड महोत्सव शुरू। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज दिल्ली सरकार से आयुष्मान भारत और आयुष्मान व्यय वंदना योजना को दिल्ली में लागू करने का एक बार फिर आग्रह किया है। श्री मांडविया ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार के कई बार आग्रह करने के बाद भी आम आदमी पार्टी द्वारा शासित दिल्ली सरकार ने इन योजनाओं को राजधानी में लागू नहीं किया है।
दिल्ली सरकार लिकर पॉलिसी में जितनी रुचि लेती है उससे अधिक रुचि दिल्ली के लोगों की हेल्थ के लिए लेनी चाहिए और भारत सरकार उसके लिए आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान व्यय वंदना योजना लेके आई है। उसका लाभ दिल्ली के बुजुर्गों को मिले, दिल्ली के नागरिकों को मिले, ये बहुत आवश्यक।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी 5 दिसंबर से अपने घोषणा पत्र के लिए जनता से सुझाव मांगेगी। मीडिया के साथ बातचीत में भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि भाजपा मेरी दिल्ली मेरा संकल्प भाजपा विषय के अंतर्गत पार्टी लोगों से सुझाव के लिए जनता के पास जाएगी। श्री बिधूड़ी ने कहा कि जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए सभी 14 जिलों में वीडियो वैन तैनात की जाएंगी। श्री बिधूड़ी ने एक फोन नंबर, एक ईमेल और सोशल मीडिया के लिए हैशटैग भी जारी किया।
सभी जिलों में वीडियो वैन भेजी जाएगी और 7 दिसंबर को 14 की 14 जो हमारी वीडियो वैन है उनको दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी और केंद्र से भी कई माननीय नेता उपस्थित रहेंगे, तो हर जिले में एक वैन जाएगी, एक लोकसभा क्षेत्र में 2-2 वैन भेजी जाएंगी।
भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन न करने के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि श्री केजरीवाल की बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता। श्री तिवारी ने कहा कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में गठबंधन करती है तो भाजपा उन्हें पहले की तरह हरा देगी।
अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से बिना समझौता किए अब वो ठीक से चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए हमारी तैयारी है कि ये दोनों मिलकर के लड़ेंगे, जैसे अभी लोकसभा लड़े थे और उसके बाद भी हम जीते थे, वैसे ही हम इनको पक्का हराएंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता इनको हराना चाहती है। दिल्ली की जनता का जीवन नष्ट हो रहा है आम आदमी पार्टी के कारण और पीछे जो दुष्प्रभाव छोड़ा था कांग्रेस के कारण।
शिक्षाविद अवध ओझा ने आज आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस अवसर पर प्रेस वार्ता के दौरान श्री केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है और अवध ओझा के आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी। वहीं आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर श्री ओझा ने कहा कि राजनीति में आकर शिक्षा के विकास के लिए काम करना उनका उद्देश्य है।
आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूँ, शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा, ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है।
दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधानसभा सत्र की तारीख टल जाने को लेकर कहा है कि सत्र निर्धारित समय पर न चलकर अब 4 दिसंबर तक टाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा शासित दिल्ली सरकार सवालों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। श्री गुप्ता ने आरोप लगाया कि सरकार ने अब तक संशोधित बजट का अनुमान भी तैयार नहीं किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आज कहा कि डीडीए द्वारा आयोजित अनाधिकृत कॉलोनी के निवासियों के लंबित पीएम उदय आवेदनों में तेजी लाने और उनके निष्पादन के लिए विशेष सिंगल विंडो कैंप में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सक्सेना ने कहा कि पिछले 2 दिन में ही 10 विशेष शिविरों में 6,654 लोगों ने सहभागिता की। वहीं उपराज्यपाल ने बताया कि इस कैंप में मालिकाना हक के लिए 1,028 नए आवेदन प्राप्त हुए। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह चहल ने 2400 घंटे पानी की आपूर्ति के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत हर घर जल के माध्यम से हर घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का सपना पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीएमसी के पास नलों के माध्यम से हर दिन स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक व्यापक योजना है।
24/7 की हर समय आपको टैप वाटर पीने का स्वच्छ पानी मिले उसकी बड़ी प्लानिंग और विस्तृत योजना है जिसका हमने फंड के लिए हमारा उसका होमवर्क किया है। उसके लिए आने वाले दिनों में हमने कंसल्टेंट को भी और बाकी सिस्टम को भी हायर करने के लिए उसमें हमने तैयारी करी है कि आने वाले दिनों में एनडीएमसी देश की ऐसी एक निकाय, एक ऐसी निगम, ऐसी काउंसिल बनेगी जो अपने सभी नागरिकों को, चाहे वो मार्केट एसोसिएशन हो, चाहे वो रेजिडेंस एसोसिएशन हो, चाहे वो बाकी सब जगह हो, वो 24/7 पीने का स्वच्छ पानी प्रोवाइड।
श्री चहल ने कहा कि आने वाले दिनों में एनडीएमसी एक ऐसा निकाय बन जाएगा जो सभी संगठनों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कामकाज में बाधा आई। दोनों सदनों की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों और उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा किया। इस कारण कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। एक रिपोर्ट।
लोकसभा की कार्यवाही सवेरे शुरू होते ही विपक्षी सांसद एक व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों, संभल में हिंसा और मणिपुर की स्थिति सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर खड़े हो गए। अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की लेकिन विपक्ष की नारेबाजी जारी रही। कांग्रेस, वामदलों और डीएमके के कई विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आकर नारे लगाने लगे। इसके बाद अध्यक्ष ने कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी। जब कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तब भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। शोर शराबे के बीच जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तटीय जहाजरानी विधेयक 2024 पेश किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष ने इन्हीं मुद्दों को लेकर हंगामा किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, डीएमके सदस्यों के हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की लेकिन ये संभव नहीं हो पाया, इसलिए सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सवेरे जब कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति ने विपक्षी सांसदों द्वारा दिए गए स्थगन नोटिस को खारिज कर दिया। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
संसद में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार और विपक्षी दल आज सहमत हो गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संसद भवन में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही निर्बाध चलने देने का अनुरोध सभी सदस्यों से किया। बैठक में नेताओं ने सदन की निर्बाध कार्रवाई में अपनी सहायता देने पर सहमति व्यक्त की। संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि बैठक में उपस्थित नेताओं ने संसद के दोनों सदनों की निर्बाध कार्रवाई में सहयोग देने का आश्वासन दिया।
विपक्ष के ओर से भी कई डिमांड रखे हैं। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में संविधान पे चर्चा होने का प्रस्ताव था उसको सरकार ने मंजूरी दिया है। हम लोग 13 और 14 फ्राइडे सैटरडे को संविधान पे चर्चा होगी। लोकसभा में पहले हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद 16 और 17 को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा होगा।
नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने कहा है कि आगामी 10 वर्षों में भारतीय नौसेना में 96 जहाज और पनडुब्बियां शामिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक हर महीने एक जहाज शामिल किया जाएगा। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने आज नई दिल्ली में बताया कि 62 जहाज और एक पनडुब्बी निर्माणाधीन है। उन्होंने बताया कि इस महीने की 4 तारीख को ओडिशा के पुरी में नौसेना दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। पाकिस्तानी नौसेना की बढ़ती समुद्री क्षमताओं पर नौसेना प्रमुख ने कहा कि वो चीन के सहयोग से कई युद्धपोत और पनडुब्बियां बना रही है। ये दर्शाता है कि चीन पाकिस्तान की नौसेना को मजबूत बनाने में दिलचस्पी रखता है। उन्होंने कहा कि भारत पड़ोसियों द्वारा उत्पन्न सभी खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।
बहुत सारे उनके जहाज और सबमरीन ये तो चाइना में बन रहे हैं, ये चाइना के हेल्प से बन रहे हैं। इससे तो पता चलता है कि चाइना इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान नेवी को और स्ट्रांग बनाया जाए। वी आर फुली अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट स्टेट, व्हाट इज द लेवल ऑफ देयर डिप्लॉयमेंट, व्हाट इज देयर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस, एंड देयरफॉर वी आर ट्वीकिंग आस एज वेल टू नेगेट एनी इंफ्रिंजमेंट इन आवर एरिया ऑफ ऑपरेशंस, एंड वी आर फुली रेडी टू टैकल ऑल थ्रेट्स फ्रॉम आवर नेबर्स।
भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी वीरेंद्र सिंह का निधन हो गया है। उन्होंने आज सवेरे नई दिल्ली के निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 55 वर्ष के थे। वीरेंद्र सिंह आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में कार्यरत थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। निर्वाचन आयोग का वार्षिक खेल सप्ताह आज से नई दिल्ली के सीरी फोर्ड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हो गया। ये खेल सप्ताह इस महीने की 7 तारीख तक चलेगा। इस साल कुल 6 खेलों को शामिल किया गया है। इस आयोजन में करीब 320 लोग हिस्सा ले रहे हैं। मीडिया से बातचीत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि खेल व्यक्ति का विकास करते हैं और टीम वर्क जैसे जीवन के सबक सिखाते हैं। नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित बाबा खड़क सिंह मार्ग पर सरस फूड महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित ये मेला 17 दिसंबर तक चलेगा। मंत्रालय के अनुसार इस महोत्सव का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और खानपान की विविधता को प्रदर्शित करना है।
इस महोत्सव में देश के 25 राज्यों के 30 स्टॉलों पर 300 से अधिक व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। आगंतुक अपने परिवार के साथ भारतीय संस्कृति और जायके का लुत्फ उठाने आ रहे हैं। महोत्सव में राज्यों के मशहूर व्यंजनों को प्रदर्शित किया जा रहा है, जिनमें राजस्थान का दाल बाटी चूरमा, तेलंगाना हैदराबाद की दम बिरयानी, ओडिशा का मुगलई चिकन, बिहार का लिट्टी चोखा और कई अन्य लजीज व्यंजन शामिल हैं। इस महोत्सव में देश भर से करीब 150 महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं हिस्सा ले रही हैं। ये महिलाएं पारंपरिक व्यंजन बनाने में माहिर हैं। आकाशवाणी से खास बातचीत में उत्तराखंड की पूजा तोमर ने कहा कि सरस फूड महोत्सव उनके लजीज व्यंजनों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
हम लोग जो स्वयं सहायता समूह से आगे बढ़े हैं, वो हम समूह के मेलों के वजह से ही बढ़े हैं। हम लोग काफी समय से मेलों का काम कर रहे हैं और सरकार हमें प्रमोट करती है जो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, वो इसी वजह से बढ़ रही हैं। सरकार ने हमें लखपति दीदी बनाया है, योजनाओं के तहत हम बन रहे हैं, तो वो सब काम सफल हो रहा है।
महाराष्ट्र की एक अन्य प्रदर्शक ने पहली बार दिल्ली आने पर खुशी जाहिर की और कहा कि ये आयोजन महिलाओं को आगे बढ़ाने में मदद करता है।
मेरे पास है मिसल पाव है, वड़ा पाव है, पाव भाजी है, पूरन पोली है, ताबेली और महाराष्ट्रीयन भेले। लखपति दीदी मतलब जो मतलब गरीब से गरीब महिला है ना, मतलब मोदी जी का सपना है कि वो हर लेडीज कम से कम साल का 1 लाख रुपया से ऊपर इनकम कमाए है। सर कम मतलब ये योजना में मतलब हमको ये सीखने को मिला है कि एक लेडीज को एक काम करती होगी, मान लो कि मैं खेती करती हूँ तो खेती के साथ में मैं दो छोटे मोटे व्यवसाय कर सकती हूँ, जैसे कुक्कुट पालन होता है, सेली पालन हमारे गांव खेड़े में ऐसे करते हैं ना, ऐसा छोटा मोटा बिजनेस करके फिर मतलब अपने जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है ना। हम गांव से आई है कि अगर आप लोग आके हमारा खाना टेस्ट करेंगे तो हमारी आमदनी में फर्क पड़ेगा।
सरस फूड महोत्सव में प्रवेश निःशुल्क है और यह महोत्सव सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक चलेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए अमन यादव।
दिल्ली से सटे नोएडा सीमा पर किसानों के प्रदर्शन प्रभावित यातायात अब सामान्य हो गया है। नोएडा के संयुक्त पुलिस आयुक्त शिवहरि मीणा ने बताया कि पुलिस लगातार किसानों के साथ बातचीत कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन ये अब भी खराब श्रेणी में है। आज शाम 7 बजे औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 284 दर्ज किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शहर के कुछ हिस्सों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से भी ऊपर रहा। दिल्ली में आज मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली सरकार से आयुष्मान भारत और आयुष्मान व्यय वंदना योजना लागू करने का फिर आग्रह किया। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र को लेकर जनता से सुझाव मांगेगी। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे के कारण लगातार 5वें दिन कोई भी चर्चा नहीं हुई। निर्वाचन आयोग का वार्षिक खेल सप्ताह आज से राजधानी के सीरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुरू हो गया। और राजधानी की कनॉट प्लेस में सरस फूड महोत्सव की शुरुआत। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।